हुए हैं
सवाल
अमेरिका में,
पैदा
सिवेल पैदा हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर कहती है जी कि कुछ बड़े एक्सपर्ट जो हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के और जो इस वक्त मिलिट्री के हैं, वो एक प्रपोजल लेके आ रहे हैं कि हम जो है, आप अगर इस प्रपोजल को मान लें तो हम स्ट्रीमलाइन कर सकेंगे सारा जो इक्विपमेंट और ट्रेनिंग जो हम देते हैं यूक्रेन को उसके लिए। अच्छा, इसके लिए इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा जी कि इसके लिए एक सिंगल कमांड जो है वो जर्मनी के अंदर आप जो है वो उसको सेटअप हम करेंगे, जो ऑलरेडी इनका जर्मनी में वैसे अमेरिका का एक सेंटर है उसके अंदर, उसको लीड करेगा एक हायर रैंकिंग यूएस जनरल जो कि ऑलरेडी वैसे यूरोप में बैठा हुआ है और जिनका के नाम जो है एडमिरल जेम्स जी स्ट्रैवरीडिस है। और उन्होंने कहा जी कि अगर हमको, क्योंकि ये काफी अर्सा चलेगी, काफी अर्सा ये यूक्रेन की वॉर चलेगी, तो इसको अगर हमको यूएस को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट शो करनी है तो हमको इनको कॉन्स्टेंटली वेपन्स और असिस्टेंस देने पड़ेंगे, तो उसके लिए एक प्रपोजल ये हम लाए हैं, तो इसको आपको पास करने की जरूरत है। इसमें जनरल क्रिस्टोफर कैवोली जो हैं उन्होंने फिर उनको दी गई है ये प्रेजेंटेशन जो कि इन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टन के सामने रखी है और लॉयड ऑस्टन और उनकी जो टीम है अब इसको रिव्यू कर रही है और वो कहते हैं कि जी आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम फाइनल डिसीजन दे सकते हैं। जो पेंटागन है और व्हाइट हाउस है दोनों इसके फेवर में है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है वो किया जाए। अच्छा, अब इसके अंडर कमिट कितना कर रहा है यूएस और जो जितना दे चुका है यूक्रेन को वो तो दे चुका है, इनदर $16 बिलियन यानी अमेरिका की अपनी इतनी पतली हुई हुई है हालत और ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे चुका है, अनदर $16 बिलियन अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट, ये यूक्रेन की मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स ताकि इनको वेपन्स दिए जा सकें, स्टॉक पाइल्स दिए जा सकें, इनके साथ जो है वो वेपन्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा सकें और ये सारा कुछ है। जनरल डेविड पेट्रस जो है फॉर्मर टॉप यूएस कमांडर इन इराक और अफगानिस्तान है, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए कि हम कॉन्स्टेंटली उनको हेल्प भी दें और उनको जो है हम इस तरह की ट्रेनिंग भी देते रहें। और ये जो जनरल कैवोली की जो रिपोर्ट है इसको मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं। ये जो रिपोर्ट लेकर आए हैं यूके डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप जो कि 40 कंट्रीज के जो डिफेंस डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने मिलकर ये इसको जो था वो बनाया था और किया था, और इसके ऊपर जो है अमेरिका कह रहा है कि अब हमको और ज्यादा जो है काम करने की जरूरत है क्योंकि अगर हम यूक्रेन के साथ ना खड़े हुए तो जैसे ये इलाके अनेक्स होते जा रहे हैं जैसे कि रशिया कर रहा है तो ये और ज्यादा वहां पे जो है खराबियां पैदा होंगी। वो कह रहे हैं कि जी जर्मनी का जो विस्बेडन का जो एरिया है, विस्बेडन का जो एरिया है वहां पर हमको एक इस तरह का सेंटर जो हमारा ऑलरेडी है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ऑलरेडी भी यूएस और जो यूरोपियन यूनियन है वो इनको यूक्रेन को बेतहाशा हेल्प भी दे रहा है और यूएस तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी दे रहा है यूक्रेनियन जो सोल्जर्स हैं उनको कॉम्बैट की, लेकिन कहते हैं इन सब चीजों को और ज्यादा एनहांस करने की जरूरत है। अब ये जो फिगर है 19 बिलियन की, इसने उन्होंने कहा जी ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप दे चुके हैं, टैक्स पेयर का मनी है ये, आप किस तरह से ये आप बाहर निकालते जा रहे हैं इतना सारा पैसा और आपके मुल्क की अपनी, जैसे कि हमने तो आज से 4 महीने पहले ही कह दिया था लेकिन अब अमरीका में भी कहना शुरू हो गए हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो है अमरीका में रिसेशन आएगा। तो भाई रिसेशन अगर आएगा, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज नहीं है, तो आप इतना पैसा क्यों मुल्क से निकाल रहे हैं बाहर? तो इसके ऊपर जो है वो काफी वहां पर क्रिटिसिज्म हुआ है। अच्छा जी, अब क्रिटिसिज्म जो है बहुत सारे जो है डिफरेंट तरफ से आया है। ताइवान न्यूज जो है उसमें एक इंटरव्यू छपा है ट्रंप साहब का, और ट्रंप साहब जो है ये इंटरव्यू देख रहे थे न्यूयॉर्क के जो बिलियनेयर हैं जॉन कैसिडी मैटिस जो कि अपना चलाते हैं WABC रेडियो शो जो चलाते हैं उसके ऊपर इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है उनको, और उन्होंने ट्रंप साहब ने कहा है कि मुझे लगता है कि जो कुछ ये कर रहा है यूएसए कर रहा है उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली ये जो अपनी हेल्प उनको देते जा रहे हैं उससे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है मुझे लगता है। तो ये जो जॉन कैट्सी मैटिडिस जो हैं इन्होंने पूछा इनसे कि अगर आप होते तो अमेरिका के प्रेसिडेंट तो क्या आप समझते हैं कि पुतिन साहब जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर हमला करते? तो ट्रंप साहब ने कहा कि अगर मैं होता तो ये तो बहुत ही खतरनाक टाइम है दुनिया के लिए भी, इलाके के लिए भी, लेकिन अगर मैं होता तो मैं वाकई पीस ब्रोकर करने की कोशिश करता, मैं ये चीजों को इतना एस्केलेट नहीं करना देता। और वो कहते हैं जी कि ये बड़ा बैड प्रेसिडेंट सेट करेगा, क्योंकि हो सकता है फिर कि चाइना भी फिर ताइवान के ऊपर अटैक कर दे और वो भी फिर जो है जबरदस्ती ताइवान को लेने की कोशिश करे जैसे कि इन्होंने किया है। और वो कह रहे हैं जी कि अब तो मुझे, ट्रंप साहब का कहना था कि मुझे खतरा इसलिए भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि अब तो पुतिन साहब ने वर्ड न्यूक्लियर यूज करना शुरू कर दिया है, और अगर सिर्फ ट्रेडिशनल वॉर ना हुई और न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई तो फिर तो आप सोच लें कि दुनिया सिर्फ बर्बादी की तरफ जाएगी। तो ये जो है बड़े खतरनाक टाइम्स हैं। और वो है तो उन्होंने उनसे फिर पूछा, उन्होंने जॉन साहब ने बिलियनियर है ना वो भी, तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा फिर आपको क्या लगता है कि गलती कहां से हुई है। तो ट्रंप साहब ने कहा जी गलती उस वक्त हुई, ये जो बाइडन साहब ने बहुत ही गलत तरीके से जो विड्रॉल किया ना अफगानिस्तान का, एकदम से जो निकलने वाली बात की है, इन्होंने अपनी वीकनेस शो की है, इन्होंने ये शो करने की कोशिश की है कि अमरीका के अंदर अब इतना साह नहीं है कि ये और लड़ सके अफगानिस्तान के अंदर। तो ये जो गलत तरीके से वहां से विड्रॉल हुई उससे दुनिया के अंदर ये सिग्नल गया कि ओहो शायद ये जो है ये मरता हुआ हाथी है, ये मरता हुआ शेर है, तो ठीक है हम फिर अपने चांसेस इधर उधर ले लेते हैं। तो कहते हैं उसका शायद पुतिन साहब ने जो है वो फायदा उठाया है। तो ये बहुत ही, वी आर लिविंग इन वेरी डेंजरस टाइम्स, तो ये उनका आया है। अच्छा जी, उसके साथ ही फॉक्स न्यूज ने फिर एक इंटरव्यू लिया, आपको पता ही है कि हवाई से कांग्रेस वुमन थी तुलसी गैबर्ट, बड़ी मशहूर है फायर बैंड किस्म की ये जो है ये है कांग्रेस वुमन थी, तो इनका इंटरव्यू जो है वो फिर आया। तो इन्होंने कहा जी कि आप बताएं कि ये जो सारी अब चीजें हो रही हैं कि जी एड और बढ़ा दो, इनके पीछे खड़े रहो, इनको बोलो लड़ते मरते रहो, तो क्या है। तो इसने भी जो है तुलसी गैबर्ट ने भी बेतहाशा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्रिटिसाइज उनको किया है, उन्होंने कहा कि इंतहाई नालायक ये एडमिनिस्ट्रेशन है, दे हैव कंप्लीटली फेल्ड टू निगोशिएट पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। वो कहते हैं जी हमारे लीडर्स क्या कहते हैं, वो अच्छा उससे पूछा, उसने कहा कि अच्छा क्या करें हमारे लीडर, कहते हैं हाँ जी हमारे लीडर्स जो हैं वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो पुतिन के हाथ में है। लेकिन वो कहने लगी कि पुतिन के हाथ में सब कुछ नहीं है, हमारे जो लीडर्स हैं यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं, यूएस के जो हैं, उन्होंने बिला वजह यूक्रेन की वॉर में फंडिंग करके इस वॉर को फ्यूल किया है, और ये भी बहुत सारा लेवरेज जो था अपना कर सकते थे अगर ये निगोसिएशन के लिए जो है पुश करते, बजाय इसके कि ये वॉर के लिए इन्होंने पुश किया है यूक्रेन को, अगर ये निगोसिएशंस के लिए पुश करते तो यहां पे पीस और प्रॉस्पेरिटी होती और ये लड़ाई ना होती। और ये अब जो इन्होंने कर दिया है इससे दुनिया के अंदर सिर्फ डिस्ट्रक्शन आएगी, पीस जाएगा, प्रॉस्पेरिटी जाएगी, लोग सफर करेंगे ना सिर्फ अमरीका में बल्कि दुनिया में भी।
सही।
तो ये फिर जी बैक टू बैक बड़े रिएक्शन आए हैं दुनिया में। ठीक है जी, इस रिपोर्ट के बाद
यूरोप में तो पहले ही आने लगे हैं।
हाँ, पहले ही आने लगे हैं। तो बहुत सारे लोग जैसे हंगरी टाइप के जो हैं वो तो अब इनकी नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम आपके अब यूरोपियन यूनियन के साथ हम नहीं खड़े हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जनाब, थोड़े दिन पहले हमने आपको ये स्टोरी बताई थी कि गुजरात के अंदर जब राइड्स हुए थे तो बिल्किस बानो जो एक फैमिली थी उस बिल्किस बानो जो है उसको रेप किया गया था, और उसके जो हैं 14 फैमिली के मेंबर्स को उसकी आंखों के सामने इंक्लूडिंग हर ओन डॉटर मर्डर कर दिए गए थे, और बड़ा ब्रूटली इसको गैंग रेप किया था। तो उस गैंग रेप में 11 कॉन्विक्ट्स जो थे उनको पकड़ा था। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट गुजरात जो हाई कोर्ट है उसने कहा है जी कि इनको छोड़ दिया जाए, और बल्कि जब ये 11 कॉन्विक्ट्स बाहर आए तो लोगों ने बड़ी खुशी मनाई और उनको बड़े हार्शर बनाए और जो है वो मिठाइयां बांटी। इसके ऊपर हिंदुस्तान के 400 राइटर्स, आर्टिस्ट, बॉलीवुड के स्टार, बड़े जो हैं की सिटीजन्स और एमिनेंट हिस्टोरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट जो हैं वो आज सामने आए हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही गलत फैसला था ये गुजरात गवर्नमेंट का, ये इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और इनको अपनी पॉलिसी ये जो इन्होंने अनाउंस की थी और इनको रिलीज किया था 15 अगस्त को, उसको रिवाइज करने की जरूरत है क्योंकि ये इंतहाई इनह्यूमन डिसीजन है जो कि कोर्ट ने दिया है वहां पे। और उन्होंने कहा जी कि फौरन अपना ये ऑर्डर जो है आप रिवोक करें क्योंकि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता और आम लोगों का अब अदालतों के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं रहेगा, और ये जो है आपने जो कुछ भी किया है ये इंतहाई गलत कदम था, और इसमें जो लोग जो इन्वॉल्व थे, जो विक्टम्स थे, जो उनके साथ ब्रूटलाइजेशन की गई और जो उन्होंने ट्रॉमा सफर किया, वो बयान करने के लायक नहीं है। तो ऐसे अगर आप मुल्क के अंदर कॉन्विक्ट्स को छोड़ना शुरू कर देंगे जो इतने बड़े क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने कहा जी कि दिस डिसीजन हैज बीन हॉरेंडसली रॉन्ग, इसको उन्होंने कहा है सारों ने, और उन्होंने कहा जी आप इसको करें, लेकिन बहरहाल जी जो फैसला हो गया सो हो गया। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जी आज एक बहुत ही ऐतिहासिक आप कह सकते हैं या हिस्टोरिक कह सकते हैं उसको, एक आज फैसला दिया है, और ये फैसला है अबॉर्शंस के ऊपर। आपको पता ही है सारी दुनिया में अबॉर्शंस के ऊपर डिबेट्स हैं और ये चल रही हैं। इसके ऊपर इन्होंने कहा है जी कि अगर कोई औरत 24 वीक्स की प्रेग्नेंट है तो अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वो अपना लीगली अबॉर्शन करवा सकती है। इसके ऊपर सवाल किए गए कि जी क्या इसके अंदर सिर्फ रेप ज्यादा औरतें जो हैं वही अबॉर्शन करा सकती हैं, या कि जो मैरिड भी औरतें हैं वो भी करवा सकती हैं। तो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर रूल 3BC ऑफ द एक्ट इसमें कोई डिफरेंस नहीं है मैरिड औरत में और अनमैरिड औरत में अगर वो अबॉर्शन कराना चाहती है, क्योंकि मैरिटल रेप भी हो सकता है। आज इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक रेप का क्या मतलब है, रेप का मतलब है कि एक औरत के साथ जबरदस्ती की गई उसके कंसेंट के बगैर, तो अगर वो औरत जो है मैरिड थी कि नहीं थी उसके कंसेंट के बगैर उसको अगर रेप किया गया था तो उसको ये हक है, क्योंकि फीटस जो है वो औरत की बॉडी के अंदर होता है, तो उसको ये राइट है कि वो अपनी बॉडी से उसको निकाल सके, प्रोवाइडेड वो फीटस 24 वीक्स का है। तो इसके ऊपर भी अब बहुत सारी बहस आ गई है इंडिया में। कुछ लोग जो हैं इसके बड़े खिलाफ हैं और कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर किसी बच्ची के साथ जो छोटी है उम्र में जबरदस्ती उसके साथ हो गई है और वो बच्चा नहीं रख सकती है तो वो, लेकिन बहरहाल जी इसके ऊपर तो अब जो शोर है काफी क्वार्टर से मचा है, तो अब वो जो जो भी मचा कल फिर वो हम आपके साथ करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई कॉन्स्टिट्यूशनली अनसस्टेनेबल है जो हमारे जो एग्जिस्टिंग अबॉर्शन के लॉज हैं, और इसलिए इनके अंदर सुधार लाने की जरूरत है। तो आज इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर तो वही चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी एक दफा से फिर से जो है मरियम नवाज और उनके जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर साहब उनको एक्विक्ट कर दिया है एवन फील्ड जो थे अपार्टमेंट्स उस सिलसिले में, क्योंकि नैब जब ये केस लेकर आया था तो नैब ने कहा था कि इन्होंने अबेट किया है अपने फादर नवाज शरीफ साहब के साथ और ये एक्यूज्ड हैं इसके अंदर, इन्होंने क्राइम कमिट किया है, तो इनको 10 साल की जेल नवाज शरीफ साहब को, 8 मिलियन पाउंड्स का फाइन, 7 ईयर्स की जेल मरियम नवाज को और 1 साल की सफदर को, नवाज को सफदर कैप्टन सफदर को जो है इनके हस्बैंड उनको दी गई थी। लेकिन आज जो है यहां पे जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो सुना जा रहा था, केस सुन रहे थे जो दो जो हैं चीफ जस्टिसेस आमिर फारूक और मोहसन अख्तर कियानी, उन्होंने कहा जी कि नैब के ये जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे सफदर मुजफ्फर अब्बासी के आपके पास क्या प्रूफ है, उन्होंने कहा प्रूफ नहीं है, हमारे पास सारी जो हैं वो चीजें हैं और एफिडेविट एक तारिक शफी की तरफ से हमने रिकॉर्ड में दिया था कि जिसमें कि इन्होंने गल्फ स्टील मिल्स की भी की थी और बाकी चीजों की भी इन्होंने सेल की थी, उसके ऊपर कोई भी चीजें सामने जो हैं वो नहीं आ रही थी, लेकिन जो हैं वो डिटेल्स हमने दी थी अदालत में। उन्होंने कहा जी, अदालत ने कहा जी कि ये सारा कुछ हेयर से के ऊपर आपने किया है, इसमें आपके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, तो हेयर से के ऊपर जो है हम सजा किसी को नहीं दे सकते, अनलेस एंड अंटिल आप प्रूफ नहीं लेकर आएंगे तो हम सजाए नहीं दे सकते। एज अ रिजल्ट, क्योंकि मरियम नवाज ने कुछ दिन पहले पिटीशन डाली थी कि उनके केसेस जो है खारिज किए जाएं, तो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये खारिज कर दिए हैं जी सारे केसेस। इसके ऊपर जी शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने नैब के ऊपर आज बहुत ज्यादा हिट किया है, उन्होंने अपनी भांजी जो है मरियम नवाज उनको बहुत ज्यादा मुबारक दी है ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि ये जो सारे लाइज और स्लैंडर और हमारी नवाज जो जो शरीफ फैमिली का जो कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है, ये सब जो है ये एक स्लैप है उनके फेस पे जो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे ये गलत इल्जाम लगाते हैं। और मैं बड़ा अपनी नीस को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और उनके हस्बैंड को भी, और मुझे बड़ी खुशी है कि मरियम को और उनके हस्बैंड को इस केस से एक्विक्ट किया गया है। इस सिलसिले में जब ये आया जी हियरिंग जब हो रही थी और जिस वक्त ये फैसला आया तो पीटीआई के लोगों ने इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन शो किया। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक और जो है डार्क डे है जिसमें कि मरियम और उनके हस्बैंड को एक्विट किया गया है, हालांकि इनके जो सारी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो उन्होंने क्राइम की थी, वो सारा कुछ जो था वो चीज सामने थी, और इनके एवनफील्ड के पैलेसेस हैं और ये शुगर मिल्स हैं, और अदालत ने पूछा था कि ये इन्होंने शुगर मिल कब इन्होंने ये सेल की थी और कहां से पैसे आए और कैसे आए और बनाई कैसे इन द फर्स्ट प्लेस, उसके बावजूद कोर्ट ने ये किया। उससे पहले असद उमर साहब जो थे वो भी इन्होंने ये कहा कि आप इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट से और क्या सोच सकते हैं, डेली बेसिस पे ये जो इनके केसेस हैं इनको जो है किया जा रहा है, एविक्ट किया जा रहा है, तो जाहिर है कि जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस जो है वो कैसे लाया जा सकता है। और जनाब हिसाबदार साहब इज बैक, तो लग रहा है कि जैसे पैसे भी वापस आ रहे हैं मुल्क के अंदर, क्योंकि जनाब आज जो है अमेरिकन डॉलर उसके अगेंस्ट जो है रुपी जो है वो अब गिरना बंद हो गया है, बल्कि उसने स्ट्रेंथ शो की है। रुपी जो थी इसाक डार के आने से पहले अगेंस्ट यूएस डॉलर 232.12 के ऊपर जो है वो चल रही थी, और आज जो इसकी वैल्यू है वो 229.62, यानी कि रुपी है स्ट्रेंथन्ड अगेंस्ट डॉलर। और इसके ऊपर जी बात करते हुए जो एडवाइजर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थे, एडवाइजर जो थे, एक्स एडवाइजर जो थे डॉक्टर खाकान हसन नजीब, उन्होंने कहा जी कि जो डार साहब हैं उन्होंने लोगों को बड़ा धमकाया है, असल में उन्होंने बड़ा वार्न किया है, उन्होंने कहा कि तुम ये पैसा की वैल्यू इसलिए गिरती है क्योंकि तुम स्पेकुलेशन करते हो। है जी, मार्केट में पैसा है कि नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं करनी तो स्पेकुलेशन करते हो, उसकी वजह से जो है उन्होंने चूंकि वार्निंग दी है इसलिए पैसे के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो आई है। इसके अलावा जो मार्केट सेंटीमेंट है इनके आने से बहुत ज्यादा हाई हो गया है, और जो है वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने फंडामेंटल्स इंप्रूव किए हैं, एक दिन में फंडामेंटल्स इंप्रूव ये किए हैं इन्होंने तो। और उसके साथ साथ जो बाहर की दुनिया में ऑयल की प्राइसेस और कमोडिटीज की प्राइसेस गिर गई हैं उसका भी बड़ा फायदा हुआ है पाकिस्तान को, अचानक से गिर गई हैं जी। और उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि क्वांटम ऑफ इंपोर्ट्स जो हैं वो भी रिड्यूस हो गए हैं, तो अब आप देखेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी नीचे आ जाएगा और जो मुल्क है वो भी तरक्की की राह पे चलेगा और इन्फ्लेशन भी आने वाले दिनों में नीचे आ जाएगी। क्या पायान एक दिन पैसा आ रहा है जा रहा है की हो रहा है पायान है
पाकिस्तान के लिए, अच्छा हो रहा है ना,
अच्छा हो रहा है। हाँ ठीक हाँ, है ठीक है जी। तो फंडामेंटल्स एक दिन में इंप्रूव हो गए हैं, जैसे ही आए हैं और उन्होंने जो वार्निंग दी है उसकी वजह से लोग सीधे हो गए हैं, पाकिस्तान के लोग बिल्कुल सीधे हो गए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आज एक इंटरव्यू दिया जा रहा था फॉरेन पॉलिसी जो है उनके जो एडिटर हैं रवि अग्रवाल को, और उनसे बात कर रहे थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के बीबी जरदारी साहब, और उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी और प्यारी वैसे बातें की। आई रियली एडमायर बीबी जरदारी साहब, अपने मुल्क का केस चलो कैसे भी है अच्छा इन्होंने फाइट किया। इनसे रवि अग्रवाल साहब ने वही क्वेश्चन किया जो कुछ दिन पहले इनसे वाशिंगटन में भी किया गया था कि जी, और जिसका के बड़ा स्नब किया था आपको पता ही है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने, एंथनी ब्लिंकन साहब ने, जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि चाइना जो है वो आप ज्यादा हेल्प कर रहे हैं चाइना नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा हाँ आप जाएं पाकिस्तानी जाके पूछें चाइना से क्यों नहीं आपकी हेल्प कर रहा है, तो बड़ा आपको पता ही हमने सुनाई थी जरा के साथ। तो यही क्वेश्चन रवि अग्रवाल ने भी इनसे किया बीबी जरदारी साहब से, उन्होंने कहा जी हम देख रहे हैं कि चाइना कोई आपकी इतनी हेल्प नहीं कर रहा, यूएसए ने आपकी ज्यादा हेल्प की है, तो आप बड़े बिग वे में, तो बीजिंग तो ऐसे आया नहीं है इन अ बिग वे आपकी हेल्प करने के लिए, हालांकि आपका बड़ा यार था। तो बिलावल साहब ने इस मौके पे बड़े समझदारी से जवाब दिए, उन्होंने कहा जी नंबर वन, चाइना जो है चाहे ये वक्त है चाहे पहले का कोई गलत खराब वक्त था, हमेशा वो हमारे साथ खड़ा रहा है हमेशा, तो इसलिए चाइना की तो हम बात नहीं करते। तो फिर उसने रवि अग्रवाल ने कहा कि नहीं नहीं, उसने तो श्रीलंका की बड़ी बुरी हालत थी, इकोनॉमिक हालत बड़ी खराब थी, उसकी तो उसने बड़ी हेल्प की, तो तुम्हारी क्यों नहीं की। उन्होंने कहा जी, बिलावल साहब ने कहा कि हम अपने आप को श्रीलंका के साथ मैच नहीं करते हैं, श्रीलंका का और मसला था हमारा। तो रवि साहब ने फिर से कहने की कोशिश की कि नहीं नहीं, सिर्फ फ्लड्स तो नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन भी तो आपकी श्रीलंका की तरह की बुरी है। तो बिलावल साहब ने कहा कि श्रीलंका की तरह की बुरी नहीं है हमारी हालत, और वैसे भी आज का इंटरव्यू जो है आपने मुझे फ्लड्स के रिलीफ के ऊपर बात करने के लिए बुलाया है, तो लेट्स फोकस ऑन दैट, लेट्स नॉट, ये इधर उधर जाने की हमें जरूरत नहीं है, और ये जो है आप हमें, तो उसने रवि अग्रवाल ने कहा लेकिन हमको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे तो बात करनी पड़ेगी। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमको जियोपॉलिटिकल फुटबॉल खेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, हम जो हमारे मसले हैं हम उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और हम फुटबॉल ना तो चाइना और ना अमरीका के बीच में बनेंगे, बल्कि मैं चाहूंगा कि जो पाकिस्तान का आज तक रोल रहा है, जो पाकिस्तान ने एज अ ब्रिज का रोल प्ले किया है बिटवीन बीजिंग एंड वॉशिंगटन, वही हम चाहेंगे कि पाकिस्तान रोल प्ले करे, ताकि इन दोनों बड़ी ताकतों के बीच में दोस्ती बनी रहे और ये जो है यूनाइटेड रहे, क्योंकि इन दोनों बड़ी पावर्स का यूनाइटेड रहने में ही दुनिया सारी का फायदा है। इसके अलावा ये ही दो बड़ी ताकतें जो हैं हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी प्रॉपरली काम कर सकती हैं। और अगर चाइना ने हमको हेल्प दी है कि नहीं दी है, ये चाइना का 100% अपना डिसीजन है। अमेरिका ने हमें हेल्प दी है कि नहीं दी है, ये अमेरिका का 100% अपना डिसीजन है। और अगर कोई हमें दे रहा है तो हम उसके लिए थैंकफुल हैं, लेकिन हम किसी की पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है वो पोजीशन है, और हम जो है वो हर किसी को एनकरेज करेंगे कि कोऑपरेशन जो है हर फ्रंट के ऊपर हर किसी के बीच में चलता रहे, और खासतौर पर पाकिस्तान जो है इसके ऊपर चलता रहेगा। तो आज इनके इस इंटरव्यू की, बिलावल भुट्टो साहब के इंटरव्यू की काफी तारीफ की जा रही है। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्टर हैं सेनेटर शरी रहमान साहिबा, उन्होंने कहा जी कि अब हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और इस इनिशिएटिव का नाम है लिविंग इंडस इनिशिएटिव। उसकी वजह यह है कि हमारा जो था, जैसे कि सिंध जो था क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन था, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वगैरह, और जिसको कि यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा था कि हम इसको जो है प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो उसके अंदर भी फ्लड्स की वजह से काफी जैसे खराबी आई है, तो उसकी डिग्रेडेशन एनवायरमेंट की वजह से हो गई है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं अब उसके ऊपर काम कर रही हैं, और यूनाइटेड नेशंस भी हमारे पे काम कर रही है, और हमारी इनिशियल कॉन्वर्सेशन उसके ऊपर शुरू हो गई है। और हम चाहते हैं कि ये जो भी कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं उससे ये जो एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं इनके निशान खत्म ना हुए, तो उसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। एक इंटरव्यू आया है जी वैरायटी मैगजीन में मलाला यूसुफजई का, और इस मैगजीन में आपको पता ही है कि वैरायटी के लिए थोड़े दिन पहले इन्होंने फैशन शूट भी किया था, तो इन्होंने पहले तो एप्पल के साथ किया था, पार्टनरशिप की थी टू प्रोड्यूस सेवरल ड्रामास। अब जो ये वैरायटी की खबर आई है उसके मुताबिक मलाला यूसुफजई अब हॉलीवुड के साथ जो है वो कोलैबोरेट कर रही हैं टू प्रोड्यूस 3 फिल्म्स। बड़ा पहले जी तड़े कोल बाजी तुसी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो वो कहती हैं जी, वैरायटी मैगजीन कहता है कि ये लड़की आम लड़कियों की तरह है, शी लव स्टोरी टेलिंग, ऑथर है, एक्टिविस्ट है, और नेटफ्लिक्स की जो ड्रामाज हैं उनको वॉच करना चाहती है, अपने डैड के साथ जोक करती है, हालांकि ये नोबेल लॉरिएट है, लेकिन ये अपनी तरह के लोगों को स्क्रीन के ऊपर देखना चाहती है, और उसी के लिए जैसे कि इसको स्ट्रेंजर थिंग्स टाइप चीज जैसे प्लेस जो है वो पसंद हैं, सीरीज पसंद है, तो उस तरह की कुछ चीज ये करना चाहती है, एंटरटेनिंग कुछ जो है एंटरटेनमेंट के अंदर। और उस सिलसिले में वो कहती है कि जो पीपल ऑफ कलर के बारे में स्पेशल परसेप्शन है वो खत्म करना चाहती हैं, और उसके लिए हॉलीवुड में ये फिल्म्स बनाना चाहती हैं। तो जनाब आने वाले दिनों में आप देखेंगे। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री, जिनकी के कुछ दिन पहले बड़े मशहूर हैं वैसे तो, लेकिन उनकी जो आई थी कश्मीर फाइल्स पिछले दिनों में बड़ी मशहूर हुई थी, उनसे पूछा गया है आज कि आप कॉफी विद करण में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो विवेक अग्निहोत्री ने कहा जी कि इंतहाई बड़ा गंदा इन्होंने वर्ड बुल करके वर्ड यूज किया, और इन्होंने कहा जी कि इंतहाई बकवास किस्म का वो प्रोग्राम है, और वैसे भी वो सारा वक्त जो है बेतहाशा इंटीमेट जो डिटेल्स हैं सेलिब्रिटीज की उनके गिर्द जो है घूमता है, तो मुझे कोई ऐसा कीड़ा नहीं है कि मैं इंटीमेट जो है वो कोई बातें करूं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी है भी नहीं करने के लिए, तो मैं तो बड़ा ऑड होऊंगा वहां पर बैठा हुआ, मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग बात करने के लिए नहीं है, और वैसे भी मेरे 2 बच्चे हैं जवान जो कि वो शो देखेंगे, तो मैं वो उस प्रोग्राम के अंदर, हाँ अगर वो अच्छी तरह से कोई और अच्छी बातें करेंगे फिल्म क्रिएटिविटी के बारे में, तो फिर मैं शायद विथ करण जो है वो कर सकता हूं। एंड जनाब दुबई का जो 800 मीटर टॉल स्काई स्क्रेपर है बुर्ज खलीफा, उसके ऊपर आज बड़े सारे जो हैं वो रोशनियों में नजर आए शाहरुख खान। शाहरुख खान को आज जो है इस बुर्ज खलीफा के ऊपर लगाया गया था, और ये दिस इज पार्ट ऑफ अ कैंपेन जो कि एक NRI की कंपनी है, बुर्जील होल्डिंग। बुर्जील होल्डिंग जो है UAE के अंदर 39 हॉस्पिटल्स हैं उनके, और इसी तरह मेडिकल सेंटर्स हैं ओमान में और UAE में, तो पार्ट ऑफ देयर कैंपेन, एंड बिकॉज शाहरुख खान इज द फेस ऑफ बुर्जील होल्डिंग्स, तो उस सिलसिले में आज ही अपनी जो कैंपेन इन्होंने की थी हेल्थ केयर के सेक्टर में, उसमें इन्होंने आज इनकी तस्वीरें जो थी बुर्ज खलीफा पे डाली थी। तो ये जो है ये कोई तकरीबन 1.10 मिनट्स का जो वीडियो था वो उधर था पहले, तो जिसमें के देखा जा रहा है कि शाहरुख खान ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं UAE के मार्टर्स को, फिर उनकी जो 2007 की हिट फिल्म आई थी ओम शांति ओम, उसका म्यूजिक बजता है, फिर उसमें शेख जो ग्रैंड मॉस्क है, शेख जायद ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी की, वो दिखाई जाती है, और फिर उसके बाद बुर्जील मेडिकल सिटी जो पूरा उधर बना हुआ है उसकी तस्वीरें वहां पे लगाई गई हैं। तो आज जो है बड़ी मतलब है ये, हाँ
इनका तो एक कॉन्डो भी है उसके अंदर ना,
अब वो है कि नहीं है, पर इनका एक जो है उनका एक इनका शाहरुख खान साहब का घर है वहां पे पाम के ऊपर, जो कि उनको एक शेख साहब ने गिफ्ट दिया है। वाह जी वाह, क्या बात है माजिद भाई।
कितना मॉर्गेज है उसपे?
उसपे जीरो मॉर्गेज है क्योंकि वो शेख ने दिया, वो पता नहीं को 35 के 40 मिलियन का वो कोई वो गा रहा है जनाब। तो जनाब एनीवेज ठीक है जी। अच्छा जनाब, हमारे जो बेचारे मुन्ने है ना, मुन्ना हमारा बेचारा नसीम शाह, उसको तो बिल्कुल नजर लगी है मुन्ने हमारे को। हाँ, पहले वो बीमार रहा है, अब जी पता चला है कि उसको फिर नमूनिया हो गया है, और आज पता चला है जी बेचारे को कोविड हो गया है। तो ये हमारा मुन्ना जो है ना बेचारा, इसको ऐसी नजर लगी है, ये बहुत ज्यादा बीमार है। और मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले भी जो होंगी ये इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, उसमें ये
उसमें नहीं आएंगे
बिल्कुल, किसी मैच में नहीं अब ये खेल सकेगा। एंड जनाब मोहम्मद नवाज ने, मोहम्मद रिजवान ने फटे चके हुए हैं जनाब, इन्होंने तो बाबर आजम का भी जो है वो अब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ही हैज बिकम द फर्स्ट बैटर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 जिसने 300 रन इन बायलैटरल T20 सीरीज में बनाए हैं। अभी आपको पता ही है जो फिफ्थ एनकाउंटर कल हुआ था उसमें 63 इन्होंने बनाए थे 46 बॉल्स पे, और ये जो इन्होंने 50 बनाए हैं इसमें इन्होंने अब जो है ही हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन बायलैटरल T20 सीरीज। और इसके अलावा अभी तक जो 5 मैचेस हुए हैं 315 रन्स ये बना चुके हैं, अभी 2 जो हैं वो रह गए हैं मैचेस। और इससे पहले बाबर आजम ने 2021 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये बनाया था, 210 रन्स बनाए थे इन 4 इनिंग्स, और रिजवान ने अब ये रिकॉर्ड जो है ये तोड़ा है। और इसके अलावा इन्होंने जो सर्बिया के लेजली डेनबॉर है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ा है जिसने कि 284 रन बनाए थे बल्गेरिया के अगेंस्ट इन 4 इनिंग्स। तो जनाब अब इस बेचारे मासूम हमारे को ना नजर लग जाए, हैं जी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट फीफा वर्ल्ड कप। ये देखो जी एयरपोर्ट, देखो जी इधर का कैचर का, जिसका कि हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो दुनिया का सबसे खूबसूरत और अच्छा द टॉप एयरपोर्ट का जिसको अवार्ड मिला है वो कतर का, ये जो दोहा का जो एयरपोर्ट है, बिकॉज ऑफ वहां पे जिस तरह से ट्रीट किया जाता है लोगों को, जो आर्किटेक्चुरल मार्वल है वो उसकी वजह से। तो जनाब ये अब इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ने अनाउंस किया है कि जो कोई भी दोहा एयरपोर्ट पे आएगा फीफा देखने के लिए वर्ल्ड कप के मैचेस, उनके पास हर हाल में नेगेटिव COVID-19 का टेस्ट होना चाहिए, उनको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, अगर वो 18 एंड अबव हैं तो उनको एक कतर की जो गवर्नमेंट ओन्ड जो ऐप है जिसका के नाम है एतराज, उसको डाउनलोड करके उसके ऊपर अपने सारे वो हेल्थ स्टेटस डालने पड़ेंगे, और उन ताकि एक्सक्यूज मी ताकि उसकी वजह से जब लोग आए कतर में तो उनको मॉनिटर भी किया जा सके कि वो उनकी मूवमेंट के वो कहां कहां जा रहे हैं, दूसरे लोग जो हैं उनके पास जो कि मतलब आस पास से आ रहे हैं उनके पास PCR टेस्ट होना चाहिए जो कि उन्होंने 48 आवर्स पहले कराया है अराइवल से पहले। और उसके बाद जो है ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि आपने अगर रैपिड टेस्ट कराना है तो रैपिड टेस्ट भी 24 आवर्स का होना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं जी ये हम कोई पॉलिसी चेंज, जैसे कि बाकी दुनिया में पॉलिसी चेंजेस आ रही हैं, जो पॉलिसी इनकी इन्होंने ये लगाई थी September 4th से, तो वो कहते हैं जी ये कंटिन्यू करेगी जब तक कि वर्ल्ड कप चलता रहेगा, जितने भी लोग आएंगे जो मूवमेंट करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी फिरेंगे और सबवे के अंदर फिरेंगे वो मास्क लगाएंगे, उसके बगैर नहीं फिर सकते हैं, स्टेडियम्स के अंदर भी जब बैठेंगे तो मास्क पहनेंगे। और इसके अलावा जो सिर्फ ये आम लोगों के लिए और फैंस के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द प्लेयर्स, जो स्टाफ हैं 32 टीम्स के साथ जो आ रहे हैं, रेफरीज, मैच ऑफिशियल्स जो हैं, सबको जो है ये नेगेटिव टेस्ट के साथ आना जरूरी है।
एटलीस्ट और खेल रहे होंगे उस वक्त मास्क नहीं लगाना ना?
नहीं उस वक्त नहीं, खेल के लिए नहीं लगाना, लेकिन मास्क की नहीं है, नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए। हर प्लेयर, हर रेफरी, हर जो ऑफिशियल आ रहा है उसका नेगेटिव COVID-19 टेस्ट होना चाहिए। और वहां पे जितने दिन ये रहेंगे उसमें कतर में, एवरी सेकेंड डे इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कि वो किट्स देंगे जो कतारी गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर इनके टेस्ट होंगे, और जो है इनको एक बबल में भी रखा जाएगा। और पूरी कतर की गवर्नमेंट कह रही है कि हम भी करेंगे लेकिन आपको भी जो है इसकी एहतियात करने की बहुत जरूरी है, तो कोई भी प्रोटोकॉल्स जो है वो कह रहे हैं जी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जब ये वर्ल्ड कप हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम सोचेंगे हमको करना है प्रोटोकॉल्स चेंज के नहीं करने हैं। तो पायान अगर आप नो वैक हैं तो आप वैक करवा लें,
मगर यहाँ तो नो वैक नहीं,
नो वैक कह रही हूँ ना, यानी कि नो वैक्सीनेशन है आपकी, इसलिए मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला अगर आपका नो वैक्सीनेशन है तो आप नहीं जा सकते, तो इसलिए आप वैक्सीनेशन करा लें, अगर आप नो वैक हैं तो वैक करा लें।
What a lame joke.
साढ़े तो इसी तरह जी, साढ़े तो ऐसे ही है, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपकी मर्जी है।
गुड वन, गुड वन,
वो ये तो इंटेलिजेंट लोगों का काम है ना जी इस तरह की बातें करना।
गुड वन, गुड वन,
हाँ जी वही है ना, नो वैक है तो वैक करा लो, उसके बगैर आप घुस नहीं सकते हो।
अच्छा जी,
कतार में।
अब इसके बाद क्या आ रहा है?
भूली हुई जो बहुत सारे जो बिसर गई थी ना यादें वो आ रही हैं वापस।
तब विद इन नो टाइम नाउ 30 सेकंड्स में आप सुन सकेंगे और देख सकेंगे क्या जनाब लियाकत मलिक साहब का आपका पसंदीदा प्रोग्राम भूली बिसरी यादें। भूली बिसरी यादें आप देखिएगा, और भूली बिसरी यादें जो है वो 6:30 से 7:30 बजे तक आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जहाँ भी हैं आप डोंट यू गो अवे, क्योंकि उनका बड़ा बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मेहनत से ये प्रोग्राम बनाते हैं वो। शहजाद जी
थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह शहजाद साहब, हम आपको लिए चलते हैं आज जीशान की जानिब, जहाँ ये अरेंज करेंगे आपके लिए बुरी बिसरी यादें।
आप सुन रहे हैं रेडियो साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारी रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या फिर आज ही eawaz ऑफिशियल ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए। और अब वक्त हुआ चाहता है खूबसूरत और मालूमती प्रोग्राम का, जो eawaz टीवी के लिए रिकॉर्ड किया गया। eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं।
मजद खवातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक भूली बिसरी यादें लेकर हाजिर खिदमत है। आज का प्रोग्राम एक फनकार एक गीत, ये तरतीब व पेशकश है हमारे टीम मेंबर हाकिम लखानी साहब जो बॉस्टन में रहते हैं, उन्होंने ये सारा प्रोग्राम जो है ये तरतीब दिया है। और हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी टीम के मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा हों और हमें आइडियाज़ दें, हम मुख्तलिफ तरीके से ये भूली बिसरी यादें जो हैं ये प्रोग्राम पेश करें। एक हमारे डॉक्टर इरफान आसिफ साहब हमारे गपशप प्रोग्राम में आए थे और वो भी कुछ आइडियाज़ दे रहे थे। इरफान आसिफ साहब, हम आपको दावत देते हैं कि आप भी कोई ऐसा प्रोग्राम जो भूली बिसरी यादें की तरह कोई प्रोग्राम हो जो आप खुद एक तरतीब दें, और इंशाल्लाह ताला हम वो प्रोग्राम भी यहाँ अपने प्रोग्राम में पेश करेंगे। आज हसब मामूल हमारे टीम मेंबर यूसुफ हमदम साहब हमारे साथ होंगे, और आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा। यूसुफ हमदम साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जनाब।
सर आज हम एक नया प्रोग्राम पेश कर रहे हैं भूली बिसरी यादें में। जो बेसिक प्रोग्राम है वो तो भूली बिसरी यादें हैं
जी,
लेकिन इसमें ये है कि हमारे हाकिम लखानी साहब ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया और उन्होंने ही गाने सिलेक्ट किए। ये है एक फनकार एक गीत। तो पहला गीत हम सुनते हैं और देखते हैं, फिल्म है बादल और बिजली।
जी जी जी,
ये 1973 में बनी थी हमदम साहब
जी जी,
ये ईस्टर्न स्टूडियो कराची में
जी जी,
और इसको मोहसिन शिरादी साहब ने
जी हाँ जी
डायरेक्ट किया था।
बड़े कराची के मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर थे वो।
जी डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, उन्होंने डायरेक्ट किया था
जी जी।
और इस फिल्म में नदीम साहब और शबनम साहबा के अलावा इन्होंने फिल्म में जमशेद अंसारी भी थे
जी जी जी।
इसमें टीवी आर्टिस्ट जो थे जहूर अहमद भी थे
जी जी।
इसमें एक टीवी आर्टिस्ट हुआ करती थी, करेक्टर एक्ट्रेस थी अर्श मुनीर।
जी हाँ जी हाँ, वो रेडियो का एक प्रोग्राम होता था
जी जी,
तो जिसमें झगड़ालू औरत का किरदार करता था और खवातीन उसको खूब सुनती थी उस प्रोग्राम को।
जी 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 जी, अर्श मुनीर भी उसमें थी, कबीर खान भी थे
जी,
शकील साहब भी थे
जी जी। तो अच्छा यहाँ मैं बताते चलूँ, अर्श मुनीर का आपने तस्करा किया तो इनकी एक साहबजादी थी, उनका फिलहाल बहरहाल वो दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो मौसीकी से शौक था, बहुत अच्छी गुलूकारा थी।
अच्छा।
तो उनका फिर एक अफेयर चला था सिंगर रफीक चौधरी से।
अच्छा।
तो रफीक चौधरी ने बाहर फिर उनसे शादी की थी।
अच्छा।
और वो सिर्फ इसी बिना पर के वो बहुत अच्छा गाती थी, उनकी आवाज बहुत अच्छी, जिन्होंने फिल्म सुबह फिर सुबह होगी बनाई थी रफीक चौधरी ने।
जी जी जी, वहीद मराज साहब की फिल्म थी फिर सुबह होगी दीबा की। अच्छा, ये जो है ये गाने में आप इसका, इस फिल्म का एक गाना था आज जाने की जिद ना करो।
जी जी, जी।
बहुत मशहूर गाना था
जी, सुहेल
राणा साहब, सुहेल राणा साहब ने म्यूजिक दिया था। लेकिन हम जो गाना आज पेश कर रहे हैं
जी जी
वो है शहनाज बेगम की आवाज में।
जी जी,
शहनाज बेगम ईस्ट पाकिस्तान की जो गुलुकारा थी
जी,
और उन्होंने ही ये गाया था, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद।
सुहेल राणा ही इनको पहली बार टेलीविजन पर लेकर आए थे।
इनकी आवाज में एक गीत देखते हैं सुनते हैं, ये है नजरें ना फेरिए, और ये फिल्म है बादल और बिजली, देखिए और सुनिए। भाई ये एक फिल्म और बनी 1985 में, फिल्म हलचल।
जी जी,
ये जावेद शेख इसमें थे और एक तुर्की अदाकारा थी
नाजा, फिल्म उसमें थी जावेद शेख की
जी, नाजा साची।
जी जी,
ये तुर्की एक्ट्रेस थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था परवेज मलिक साहब ने
जी,
एक कामयाब फिल्म थी। उसका एक गाना देखते हैं, आवाज है ناہید اختر صاحبہ کی
جی
جان من جانان من، دیکھیے اور سنیے. حمدم بھائی، یہ ذرا بتائیے کہ جو نثار بزمی صاحب تھے،
جی جی،
پہلے تو انہوں نے ہندوستان کی فلموں میں بڑی موسیقی دی،
بہت سی ایکشن فلمیں تھیں انڈیا کی، جس میں بھگوان کی فلم بھی تھی، جو ایکٹر بھگوان تھا، تو چند فلمیں بامبے میں انہوں نے کی تھی، لیکن وہ وہاں پر وہ مقام نہیں حاصل کر سکے، ایک دور تھا بہرحال ان کا بھی, پھر جب وہ پاکستان آئے تھے تو یہاں انہیں شہرت ملی تھی.
جی جی, اور کافی میں سمجھتا ہوں کہ حسن طارق صاحب کی فلموں میں انہوں نے زیادہ تر جو ہے
جی ایک گرو بن گیا تھا حسن طارق صاحب کا اور نثار بدمی صاحب کا, اور بڑی اچھی اچھی فلمیں دی انہوں نے جن میں آپ کی عمر آؤجان ادا بھی ہے.
جی جی,
بہت خوبصورت فلمیں, تہذیب ہیں
جی,
بہت فلمیں, ماضی حال مستقبل.
جی, جو تہذیب فلم کا ہم ایک گیت پیش کرتے ہیں, یہ تہذیب جو تھی یہ حسن طارق صاحب کی فلم تھی, اور اس یہ فلم جو تھی رابعہ فلمز کے بینر تلے یہ بنی تھی. رابعہ حسن جو حسن طارق صاحب اور رانی بیگم کی بیٹی ہیں اور ہماری بڑی کرم فرما ہے, ہمارے ساتھ بھولی بسری یادیں میں بھی وہ ایک دو دفعہ تشریف لائیں, بڑی ایجوکیٹڈ اور بڑی ملنسار لڑکی تو لڑکی ہیں, اور حسن طارق صاحب کی ایک ہی اولاد جو رابعہ. اور اس فلم کا ایک گانا تھا, فلم ہے تہذیب, آواز رونا لیلا, اور یہ پکچرائز ہوا ہے شاہد حمید صاحب پہ اور رانی بیگم پہ. آجا ہم کیوں رہیں اکیلے, دیکھیے اور سنیے. آجا
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की जानिब से एक पैगाम, क्या आप 24 अक्टूबर को 2022 के म्यूनिसिपल और स्कूल बोर्ड इलेक्शन वाले दिन मसरूफ होंगे? अपना वोट जल्दी दें। एडवांस वोट की तारीख 7, 8, 9, 14, 15 अक्टूबर हैं। याद रखिए कि आपकी तमाम मालूमात वोटिंग से पहले वोटर्स लिस्ट में दुरुस्त हों। वोटर्स की अहलियत, पोलिंग स्टेशन की लोकेशन, वोटिंग लिस्ट और दीगर मालूमात के लिए विजिट करें brampton.ca/brampton-votes।
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसुकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसुकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसुकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577।
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरिसन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आते हैं इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त दिया जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरिसन जी बड़ी कमाल की तिगड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा। $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरिसन Now 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages।
हाँ जी, जरा एक वेबसाइट नोट करो, afcgrocery.com। ए है जी एशियन फूड सेंटर दी ब्रांड न्यू वेबसाइट, जिथो तुसी इंडो कैनेडियन ग्रोसरी, मिठाइयां, ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, इंडिया वाले भांडे, सजावट दा समान, सारा कुछ जो स्टोर ते जाके देखना। हुण एशियन फूड सेंटर दी इस वेबसाइट ते देखो, $100 या इस तो ज्यादा दे ऑर्डर ते पाओ फ्री डिलीवरी इन ऑल GTA एरियाज, फ्री कर्बसाइड पिकअप अवेलेबल इन ऑल लोकेशंस ऑन सेम डे, विजिट afcgrocery.com।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान। 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम, हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकेंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर 10530।
अरे भाई, हम जानते हैं कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, जैसे रेड लाइट सिग्नल, बैंक की लाइन और हर रोज वो कॉफी की लाइन। मगर हम करते हैं आपके अपनों के बैंक अकाउंट्स पे मनी ट्रांसफर इन सबसे जल्दी, यानी रिसीव कटी नहीं और मनी ट्रांसफर डन, सिर्फ और सिर्फ एबल एक्सप्रेस की रिलायबल सर्विस के साथ। पाकिस्तान में डेडिकेटेड कस्टमर सर्विसेज, हमारी पहचान एबल एक्सप्रेस। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉल नाउ 416-230-4444। एबल एक्सप्रेस।
अपने घर की खूबसूरती के लिए आज ही कॉल कीजिए SS पेंटिंग। किसी भी इंटीरियर या एक्सटीरियर पेंटिंग के लिए, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, ड्राईवॉल रिपेयर्स, वाटर डैमेज, वॉलपेपर रिमूवल, प्रोफेशनल पॉपकॉर्न स्टोको सीलिंग एंड रिपेयर विद गारंटी, कॉल टुडे SS पेंटिंग 6472711974, 6472711974 SS पेंटिंग।
सारी दुनिया के महवर में गूंजती है
Listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
From helmets to sunscreen, we do everything we can to keep our kids safe. So how can the COVID-19 vaccine help protect them? COVID-19 vaccines can help keep children safe from severe illness and potential long-term effects of the virus. Millions of children in Canada and around the world have already been safely vaccinated. Help protect your child. Book their appointment at canada.ca/COVID-vaccine. A message from the Government of Canada.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਲਓ ਜੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ ਆਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com QTL ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 9058747171
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
SNS Lawyers ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS Lawyers ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।